ओम शांति। ये तो बहुत बड़ा धीरे हुआ। ओम शांति, ओम शांति। या दादी जी की आ रही, या दादी जी की आ रही, बहुत ही याद आ रही, याद दादी जी की आ रही। कैसे कहें और क्या कहें, कैसे कहें और क्या कहें, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही। ओम संध्या को है मुश्किल दादी भूलना, ओम संध्या को है मुश्किल दादी भूलना, मेरे गीतों की लय ताल पर दादी जी का झूमना, प्यार से मेरे मस्तक को है चूमना, प्यार से मेरे मस्तक को है चूमना, ले हाथों में हाथ आपका स्नेह से दादी झूलना, स्नेह से दादी झूलना। दिल में आज भी जादू जगा रही, आज भी जादू जगा रही, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही। कैसे कहें और क्या कहें दादी, कैसे कहें और क्या कहें, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही। मैं कहीं भी रहूं पड़ती नजर है आपकी, और इशारों से कहना ओम आओ तुम इधर, ओम आओ तुम इधर। प्यार परिवार का इतना मिला, प्यार परिवार का इतना मिला है नामुमकिन चुकाना सिलसिला, नामुमकिन चुकाना सिलसिला। याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही, बहुत ही याद आ रही। कैसे कहें और क्या कहें दादी, कैसे कहें और क्या कहें, याद आपकी आ रही, याद आपकी आ रही, याद आपकी आ रही। दिल में चमकी ऐसी प्रकाशमणि, दिल में चमकी ऐसी प्रकाशमणि, आपका स्नेह बना सबसे है धनी, जिसने बाबा का मुझे बना दिया, जिसने बाबा का मुझे है बना दिया। एक ही एक आप दादी जी प्रकाशमणि, आप दादी जी प्रकाशमणि, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही। याद दादी जी की आ रही, याद दादी जी की आ रही, बहुत ही याद आ रही, बहुत ही याद आ रही, बहुत याद आ रही, बहुत ही याद आ रही, याद दादी जी की 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 आ रही, कैसे कहें और क्या कहें, ओ कैसे कहें और कैसे कहें, याद दादी जी की आ रही, 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 भाई जी के संग भी आ रही, भाई जी के संग भी आ रही। ओम शांति, ओम शांति।
धन्यवाद। थैंक यू भाई, सभी ताली बजाओ अच्छी तरह से। ओम शांति। आज का दिन विशेष दिन है, अमृत वेले से लेकर के आज सारा दिन बाप दादा के साथ साथ अपनी अति प्रिय सभी के दिलों पर राज करने वाली दादी प्रकाशमणि जी, उनका आज 12वां स्मृति दिवस होने के कारण अव्यक्त बाप दादा के संग संग अव्यक्त दादी जी की भी याद सभी के दिल में समाई हुई है, और हर एक बहन व भाई, खासकर इस ग्रुप के अंदर विशेष माताएं, आप सभी को दादी जी ने अपनी अपनी रीत से, चाहे दृष्टि दे करके, चाहे हाथ मिला करके, चाहे मस्तक पे हाथ फिरा करके, असीम प्यार सभी को दिया। उसकी रिजल्ट है जो आप हम सब यहां विशेष दादी जी का स्मृति दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना के आद में ब्रह्मा बाबा ने जो 8 बहनों और माताओं का ट्रस्ट बनाया था, जिसमें मातेश्वरी सरस्वती को उस ट्रस्ट का हेड बनाया था, साथ में जो अन्य बहनें थीं उनके नाम आज मुरली में आपने सुने, दादी प्रकाशमणि जी दादी पुष्प शांता जी, विशुकशोर दादा, सभी वो आदि रतन जिन्होंने परम पिता परमात्मा की, शिव बाबा की डायरेक्ट पालना ली। ब्रह्मा बाबा तो निमित्त रथ उनके, लेकिन शिव बाबा ने उन आदि रत्नों को इस यज्ञ के जो आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें दीदी मनमोहिनी, दादी जानकी, दादी रत्नमोहिनी, दादी गुलदार, सभी दादियां, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, पुष्प शांता दादी, शीलेंद्रा दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, गंगे दादी और मिठू दादी, आलोंडर दादी, मैं सभी के नाम अगर गिनती करूं तो 108 की माला हो जाएगी। लेकिन सभी ने, और उनमें भाई भी बहुत अच्छे अच्छे, विश्वकिशोर दादा, आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, चंद्रास दादा, अन्य भी दादा थे, सभी एक प्रकार से मैं कहूंगा कि बहुत ही भाग्यवान थे कि जैसे ही शिव बाबा का अवतरण इस धरा पर हुआ, ये सभी भाई बहने ओम मंडली में आकर के अपने जीवन में परिवर्तन करने का उन्होंने संकल्प ले लिया, और उनमें सभी जानते हैं सबसे आगे मम्मा मातेश्वरी सरस्वती, और उनके बाद फिर दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि जी। विशेष रूप से इनका बहुत अहम पार्ट रहा, और दादी जी के प्रति तो सभी जानते हैं कि जब मातेश्वरी जी अव्यक्त हो गए, विश्वकिशोर दादा अव्यक्त हो गए, तो मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी दोनों विशेष रूप से यज्ञ की कारोबार में बाप दादा की डायरेक्शन पर बहुत बहुत दिल से व्यस्त हो गए। मैं कहूंगा उनमें भी दादी प्रकाशमणि जी का पार्ट अपना था, मनमोहिनी दीदी का पार्ट अपना था। प्रकाशमणि दादी जी को वरदान कहो बाबा का, और मैं समझता हूं कि शिव बाबा के इस धरा पर आने की सूचना विश्व के कोने कोने तक पहुंचे, उसके लिए विशेष दादी जी का बहुत बहुत पार्ट रहा है। यूं तो देखिए, जो भी मुख्य बहने हैं जो अपने भारत में हैं, बहने भाई, और इसके साथ साथ जैसे जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, ओम प्रकाश भाई, महेंद्र भाई, अमीरचंद भाई, अन्य भी बहुत सारे भाई, बहुत अच्छे अच्छे भाई हमारे, करुणा भाई और मृत्युंजय भाई, इन सब का दादी जी के प्रति इतना प्यार रहा, जब से साकार बाबा अव्यक्त हुए, सभी जानते हैं 18 जनवरी 1969, तब से लेके दादी जी ने इस महान यज्ञ की बागडोर अपने हाथ में ली, और दादी जी भली भांति इस बात को जानती थी कि ये विश्वव्यापी सेवा के लिए अधिक से अधिक बहने और भाई उनके राइट हैंड बनेंगे, तभी ये कार्य पूरा होगा। तो दादी जी ने विशेष रूप से, मैं दादी जी के उन बातों को आज अपने मन पटल पर ला रहा था कि ऐसी क्या बात थी जो साकार बाबा के बाद, जब कई लोग समझते थे कि ये संस्था देखना अब क्या होता है, ये बहुतों को ये विश्वास ही नहीं हो सकता था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक दिन विश्वव्यापी संस्था बन जाएगी, ये किसी को ख्याल तक नहीं आता था। लेकिन कहा जाता है कि अगर लीडर योग्य है और उन्होंने अपने साथियों को आप समान बनाया है, तो ही वो संस्था कहो, ऑर्गेनाइजेशन कहो, इंस्टीट्यूशन कहो, वो सफल होता है, आगे बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकल देखा दादी जी जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, तो उस समय 150 सेवा केंद्र थे और आज कितने हैं। दादी जी के अव्यक्त होने तक, 2007 तक 7,500 सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हुए थे और 110 देशों तक बाबा का संदेश पहुंच गया हुआ था और बाबा का झंडा 110 देशों में लहरा रहा था उस समय। दादी जानकी जी ने उसके बाद अपने हाथ में बागडोर ली और दादी जानकी जी के गाइडेंस में विदेश में बहुत सेवाएं आगे बढ़ी हैं। हालांकि उनके साथ में हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क में है, ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन उनके साथ में जर्मनी में है, ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन दादी की राइट हैंड लंदन में है, इसी तरह से वेदांती बहन अफ्रीका में है, हमारे चार्ली भाई, केन भाई, विदेश के भाई जिन्होंने ज्ञान लेकर के और अपना जीवन सफल किया है, उनको भी ऐसा प्रेरणा देने वाली दादी प्रकाश बनी थी। तो ऐसे भाई, ऐसे बहने देश विदेश में, हमारी रजनी बहन जापान और दूसरे देशों में जा करके सेवा कर रही हैं। इसी तरह से और बहने हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई न्यूजीलैंड में जाके सेवा कर रही है कोई, और डॉक्टर निर्मला दीदी, आपने नाम तो सुना होगा, कहने में आता ज्ञान सरोवर की इस समय डायरेक्टर हैं, पर निर्मला दीदी डॉक्टर थी, बॉम्बे के अंदर प्रैक्टिस करती थी, लेकिन दादी जी ने उनको विदेश की सेवा के लिए खास ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस तरफ उनको निमित्त बनाया। तो एक बार एक संत मधुबन आए थे हरिद्वार से, और वो पहले तो एक दिन जब आराम से सब आराम कर रहे थे तो वो अपनी नींद त्याग करके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, और उस समय के वाइब्रेशन को उन्होंने फील किया कि यहां कितनी पावनता है, कितनी पवित्रता है, कितनी श्रेष्ठता है। दूसरे दिन दादी जी से जब मिले तो दादी जी से पूछने लगे, दादी जी आपके कितने फॉलोअर हैं? तो दादी जी ने मुस्कुरा के कहा, स्वामी जी यहां एक भी फॉलोअर नहीं है। वो तो हैरान हो गए सुनकर के भी, एक भी फॉलोअर नहीं है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो दादी जी ने क्या जवाब दिया होगा, आपको सुनकर के नशा चढ़ेगा कि ये मेरे सभी बहनें और भाई हैं, बाबा के राइट हैंड हैं ये। तो इस तरह की भावना दादी के दिल में बहुत बहुत गहराई से सदा रहती थी। दादी जी ने अपने जीवन काल में अपना एक एक सेकंड बाबा की याद में, बाबा की सर्विस में हर तरह से, ट्रैवलिंग भी जितनी दादी जी ने की मैं नहीं समझता हूं कोई और इतनी करेगा, भारत के अंदर भी कोने कोने में गई, विदेश में भी कोने कोने में गई, और जहां भी उन्होंने पांव रखा वहां फूल खिलाए, वहां सेवा केंद्रों की स्थापना हो गई, और आज शिव बाबा का झंडा सब जगह लहरा रहा है तो उसका श्रेय दादी प्रकाशमणि जी को ही जाता है। अब इसके साथ में खास बात जो आपके भट्टी के कनेक्शन की बात है, दादी जी को विशेष परिवारों के साथ और उसमें भी माताओं के साथ बहुत बहुत प्यार था, और जब भी कभी माताएं बहनें दादी से मिलने आती तो दादी को बहुत बहुत खुशी होती थी। क्यों? साकार बाबा ने जब ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट में माताओं बहनों को ही रखा, तीन माताएं पांच कुमारियों को पहले पहले रखा, और बाबा का जो असूल था जिसका भाव यही है कि अगर माताएं निमित्त बनती हैं ईश्वरीय सेवा में तो सारे विश्व का कल्याण हो जाता है, भाई सिर्फ बनते हैं तो थोड़े संन्यास आश्रम खुल जाते हैं। तो आप देखिए बाबा की ज्ञान की बातें और बाबा के असूल जो दादी जी ने उनको आगे बढ़ाया, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि माताओं बहनों को अगर ये ईश्वरीय ज्ञान दे करके सशक्त बनाया जाए, उनको शक्ति रूपा बनाया जाए, जिनको लोगों ने क्या मान के गिलानी करते थे, स्त्री को क्या मानते थे सभी जानते हैं। मैं नहीं उनको रिपीट करूंगा, अपने मुख पर ऐसे शब्द नहीं लाऊंगा, लेकिन बाबा ने सबको शक्ति रूपा बना दिया और उसमें विशेष रूप से दादी जी ने इस बात को लिया कि माताओं को खास, और उसके लिए ही ये भट्ठी का कार्य शुरू किया गया। आज आप सब जो भट्ठी में आए हैं, 13 साल से ऊपर के हैं सभी, तो 13 साल से ऊपर के तो कितनी भट्ठियां की होंगी आपने, और हर भट्ठी में आने के बाद क्या समझते हैं दादी जी ने कितना हमारे लाभ के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मा के सच्चे सुख के लिए ये कितना सुंदर कार्यक्रम रच करके हमें अपने दिल तक पे बिठा दिया है। तो दादी जी की बातें जब मैं सोचता हूं, क्योंकि मेरा दादी जी के साथ बहुत छोटी उम्र में उनके समीप पहुंच गया था, 20 साल की उम्र में पहले परिचित हुआ। दादी जी बॉम्बे में आई बाबा से मिलने के लिए, उस समय बाबा उधर बॉम्बे में थे। उस समय से दादी जी से इस तरह का निजी संबंध जुट गया जैसे बड़ी बहन, कोई 13-14 साल की बड़ी बहन हो और 8-9 साल का छोटा भाई हो, इस तरह का संबंध दादी के साथ था। और दादी ने बहुत बहुत प्यार से गाइड किया, आगे बढ़ाया, साथी बनाया, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। क्योंकि दादी जी पहले तो पटना में रहती थी, लेकिन 1964 में बॉम्बे के अंदर रमेश भाई, उषा बहन और निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, शीलिंद्रा दादी, और फिर रमेश भाई की बड़ी बहन अनीला, डॉक्टर अनीला बहन, उनके जीवन साथी उषा बहन, उनकी माता जी शांता माता, सभी ने, और भी उनके भाई मधु भाई, सभी ने साथ दे करके विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी का उस समय आयोजन किया था कबूबाई हाई स्कूल में, और उसका उद्घाटन करने के लिए गवर्नर, उस समय के गवर्नर, उन्होंने आकर के जब उद्घाटन किया तो उससे वो प्रदर्शनी मैं कहूंगा मशहूर हो गई। उसका नाम था विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी के अंदर प्रकाशमणि दादी जी और जगदीश भाई जी ने आकर के विशेष मेडिटेशन के संबंध में, योग के संबंध में 5 चित्र इतने सुंदर बनवाए थे, उनके कारण वो प्रदर्शनी की शोभा और बढ़ गई थी। और उस प्रदर्शनी के बाद दादी जी को बाबा ने बॉम्बे की सेवा के लिए निमित बना दिया। पटना से उनको बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया और 1964 से लेकर के बाबा के अव्यक्त होने तक दादी जी बॉम्बे में गाम देवी सेंटर पर रही। भले सेंटर छोटा था लेकिन छोटे सेंटर से दादी जी ने जिस तरह से भाई बहनों को इतना उमंग भरा कि ऊंचे से ऊंचे वीआईपीज की भी सेवा, न्यूज़पेपर्स की भी सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम, और सिर्फ बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे से सारे भारत के कोने कोने में जाकर के विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन होता रहा। और उसके बाद इतनी बॉम्बे में भाई बहनों की संख्या बढ़ती गई है। और फिर आप जानते हैं बॉम्बे के साथ साथ साकार बाबा को 3-4 और शहर बहुत ख्याल में आते थे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, पुणे, इस तरह से, और पंजाब के भिन्न भिन्न स्थान, अमृतसर, चंडीगढ़, उस तरफ भी, हरियाणा के भी, और गुजरात पास में तो गुजरात भी बहुत नजदीक, तो गुजरात भी बाबा को बहुत प्यारा लगता था। इसलिए शायद आपको पता है साकार बाबा ने जानकी दादी को विशेष गुजरात का सेंटर खुलवाने के लिए वहां निमित्त बनाया था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें दादियों का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और प्रकाशमणि दादी जी की एक विशेषता थी कि सबको साथ लेकर के चलने की। भिन्न भिन्न आज मुरली के अंदर तो नेताओं की बात बाबा ने कुछ और कही, लेकिन देखा गया कि नहीं, जो बाबा के एजुकेटेड जो नेताएं बने, चाहे माताएं बहनें, चाहे भाई, चाहे कुमारियां, चाहे कुमार, तो सभी के दिल में एक ही उमंग है कि हम सब मिलकर के बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। और दादी जी ने प्रैक्टिकल में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई यज्ञ के सामने, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम रखते थे और बड़े चैलेंज आ जाते थे उस समय, कई रुकावटें सामने आती थी, लेकिन दादी जी की विशेष रुचि कहो, सोच कहो, अथवा उनके भावना कहो, उनका निश्चय कहो, योग का प्रोग्राम रख देती थी। भट्ठी रख देंगी, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है और कोई विघ्न का डर लगता है तो योग की भट्ठी रखने से, बाबा की शक्ति से वो सब विघ्न दूर हो जाते थे। ऐसा मिसाल दिल्ली का एक है, दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम 1973 में हुआ था, और उस समय रशिया के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे थे और उनका प्लान, उनका प्रोग्राम रामलीला मैदान में अनाउंस हो गया था, लेकिन दादी जी ने जो मेला तैयार हुआ था, अभी थोड़ा बाकी था, उसमें एक विशेष ऐसा स्टॉल बनवाया जिसमें लगातार शिव बाबा की याद का क्या कहें उसको भट्टी रख दी, 24 घंटा भट्टी लगातार कुछ दिन के लिए। तो उसके फलस्वरूप उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके सेक्रेटरी ने उनको बताया कि ये मेला तो इतना बड़ा बन चुका हुआ है और उसमें देवी का विशेष जो स्टॉल है दुर्गा का वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है, तो देवी के मंदिर को छेड़ना नहीं चाहिए। उनकी एडवाइस पर इंदिरा जी ने उस समय जो रशिया के प्रेसिडेंट आने वाले थे उनका स्वागत का प्रोग्राम लाल किला में शिफ्ट कर दिया और रामलीला मैदान को हाथ नहीं लगाया। तो दादी जी का विश्वास, कोई भी विघ्न भी आए अगर तो उसको पार करने का तरीका ही था तपस्या से। जितना तपस्या के ऊपर दादी जोर देती थी, ये जरूर है दादी जी के अंदर तो सर्वगुण थे। स्टूडेंट लाइफ भी प्रैक्टिकल में देखा दादी जी दीदी जी की, नोटबुक पेन लेकर के मुरली लिखना पढ़ना, साकार बाबा के सामने बैठ करके मम्मा के सामने बैठ करके योग करना, और फिर इसके साथ में आपस में रू रूहान में भी ज्ञान की रू रूहान करना, जिसको कहते थे आओ आपस में थोड़ा ज्ञान की बैडमिंटन खेल लें, तो खेल खेल में भी बहुत ज्ञान की बातें होती। और इसके साथ में जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचे, तो बहुत सारे प्रदर्शनियों के प्रोग्राम और बहुत सारे फिर बाद में सभी जानते हैं जो बड़े बड़े जोन्स के भाई बहने हैं। तो दादी जी ने एक बार एनुअल मीटिंग के टाइम पर विशेष सबका विचार सुनने के बाद अपना विचार सुनाया कि दादी जी चाहती हैं कि ऐसा प्रोग्राम रचो जो कम से कम 1,00,000 भाई बहन उसके अंदर आने चाहिए। उसके बाद ये मेगा प्रोग्राम शुरू हुए जिसमें बॉम्बे से गीत गाने वाले बड़े आर्टिस्ट वो भी आकर के ज्ञान के गीत गाते थे, और उनके साथ में दादी जी का प्रवचन होता था और बहुत सारे कलाकार जो उस एरिया के होते थे उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो आपको ये जानकर हर्ष होगा कि एक एक जगह पर जहां कार्यक्रम किए, चाहे गुजरात में किए, चाहे बॉम्बे में किए, चाहे दिल्ली में किए, चाहे भोपाल में किए, और चाहे इंदौर में किए, दूसरी जगह भी पंजाब साइड में भी किए, सब जगह पर, कलकत्ता में भी किए, कलकत्ता की परेड ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम किया था। तो लाखों लोगों ने एक एक प्रोग्राम में आकर के लाभ लिया है। तो इतना श्रेय जाता है दादी जी को कि उन्होंने जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए स्वयं का भी और बाकी भी सबका भाग्य बनाया, ये प्रैक्टिकल देखने में आया। और आज हम सभी उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं और स्मृति दिवस में बहुत प्रेम भरे गीत भी सुन रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनकी जीवन कहानी को जानने से और उनके जो दिल में उमंग रहता था उसको देखने से आता है कि हम दादी का राइट हैंड बन करके जो कार्य दादी जी ने शुरू किया था अच्छी तरह से इतना आगे बढ़ाने का, इसको पूरा करेंगे। और बाबा ने खास दादी जी को जैसे तरकश में तीर भरे जाते हैं, विशेष विश्वरतन दादा को एक बार एक टेप भर करके और भेजी थी बॉम्बे के अंदर भारतीय विद्या भवन में एक महिला सम्मेलन था। मुख्य बहने माताएं जो भिन्न भिन्न संस्थाओं की हेड थी उनका 15 माताओं का विशेष भाषण का प्रोग्राम था और सुनने वाले तो बहुत भाई बहने थे। और उसमें विशेष बात थी किस कारण से वो रखा गया था कि उन दिनों में गुजरात में खासकर सौराष्ट्र साइड में छोटी छोटी उम्र की बहनें थोड़ा सा घर से तंग आई और जीवघात कर लेती थी, तो उसके लिए खास वो सम्मेलन रचा गया था। और उसमें सभी ने, क्योंकि दादी जी निमित्त बनी थी, तो दादी जी का भाषण सुनने के बाद आप सोचेंगे दादी जी ने क्या भाषण किया होगा। साकार बाबा ने खास टेप भर करके विश्वरतन दादा को प्लेन से भेजा कि ये दादी जी सुने, फिर इसके बाद भाषण करे। और दादी जी का भाषण सुन करके भाषण करने वाले सभी जो भी निमित्त उस समय की स्पीकर थी बहने, सब ने दादी जी की स्पीच को रेफर करके करके और अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया था। और उसके फलस्वरूप बहुत कार्य हुआ है जो गुजरात के तो छोड़ो लेकिन दूसरे स्थानों पर भी जो छोटी उम्र में ऐसी महिलाएं आप घात कर लेती थी उनको उससे बचाने के लिए खास उनके लिए प्रोग्राम रखते थे ताकि कोई भी टेंशन में आकर के आप घात ना करे। क्योंकि कहा जाता है, दादी जी बहुत प्यार से कहती थी, आप घाती महापापी, आप घाती महापापी, इसका कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। लेकिन उससे बचें कैसे, तो जो उनकी तकलीफ होती थी उसके लिए भिन्न भिन्न संस्थाओं को निमित्त बना करके उनकी समस्याओं का समाधान करवाना शुरू किया। आज आप सब जानते हैं कितनी संस्थाएं बनी हुई हैं, खास इसीलिए कि अगर कहीं परिवारों में कोई दुख तकलीफ है तो उसको दूर करने के लिए समाज के लोग आगे आए। प्रकाशमणि दादी ने संतों महात्माओं को या तो बड़े बड़े जजेस, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और बड़े बड़े ऑफिसर्स सबको प्रोग्राम के लिए जो आते थे, खास विश्व नवनिर्माण के नाम से और फिर यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो उन सब के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताएं, महात्माएं, जजेस सब आते थे। और दादी जी सबको अपनी नम्रता से और अपने निस्वार्थ भाव के प्यार से सबका दिल जीत लेती थी। इसलिए आप सब जानते हैं, जब दादी जी अव्यक्त हुई तो हमारे आज के प्रधानमंत्री, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, विशेष रूप से यहां आकर के दादी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और उनका बहुत प्यार था दादी से। पीएम बनने से पहले 3 दिन के लिए वो खास दादी जी से मिलने और 3 दिन के लिए ज्ञान सरोवर में रह करके तपस्या की उन्होंने, उसके बाद ही उन्होंने अपना वो प्रोग्राम शुरू किया कि अगले इलेक्शन में हम किस तरह से जीतेंगे। सभी जानते हैं पहली इलेक्शन में भी जीते, अब दूसरी में भी जीते। क्यों? उन्होंने भी अपने मन में बहुत कुछ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जानकारी कह लो, ज्ञान कह लो, थोड़ा शीलू बहन ने उनको योग का अभ्यास भी कराया था, तो वो सब बातों को जानने के फलस्वरूप उनको बहुत रिगार्ड है। और खासकर हमारी दादी जानकी जी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के, सारे भारत में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, उसके ब्रांड एम्बेसडर दादी जी को बनाया। तो इस तरह से देखा जाए तो दादी प्रकाशमणि जी ने जिन जिन आत्मों की सेवा की, चाहे वो भारत के वीआईपी, चाहे यूनाइटेड नेशंस के बड़े बड़े सेक्रेटरीज, क्या बोलते हैं उनको, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में थे वो आए, और कई धार्मिक नेताएं आए विदेश से भी, और भारत के भी कोने कोने से धार्मिक नेताओं ने आकर के दादी जी के साथ जिस तरह से अपना डायलॉग कहो, बातचीत कहो, करके लाभ लिया। और एक विशेष बात सभी जानते हैं, हमारे गुजरात राजस्थान के गवर्नर थे डॉक्टर चैना रेड्डी जी, वो दादी जी के संपर्क में आए और मोहिनी बहन के संपर्क में आए, उनको ज्ञान की बातें सुन करके, ईश्वरी सेवाओं की बातें सुन करके वो इतने प्रभावित हुए, उनके मन में आया दादी जी इतनी विश्व की सेवा कर रही है तो दादी जी को सम्मानित कैसे किया जाए। तो उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, वहां पर विशेष दादी जी को डॉक्टरेट की डिग्री दी, प्रैक्टिकल में उनको बुला करके वहां सम्मानित किया और वो डिग्री से सम्मानित। तो इस तरह से जब सोचते हैं कि दादी जी ने किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, मांगा नहीं, लेकिन दादी जी की शख्सियत ऐसी थी, पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो हर एक के दिल को जीत लेती थी, हर एक से वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट कमांड करती थी। ये प्रैक्टिकल देखा हमने, और हमें उनके साथ रह करके अपने जीवन को, क्या कहूं मैं, आगे बढ़ाने के लिए दादी जी का इतना स्नेह मिला, इतना सहयोग मिला, और उसके साथ साथ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो सेवाएं हैं उनके लिए जो आवश्यकता थी, बड़े स्थान चाहिए थे, जैसे आप जिस हॉल में बैठे हैं आप सोच सकते हैं 20,000 लोग इसमें बैठ सकते, ऐसे ऐसे रिट्रीट सेंटर्स, बड़े सेंटर्स और ज्ञान सरोवर, ये शांतिवन, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स और फिर ये दूसरे भी आसपास आप देखते हो, तो दादी जी ने बड़ी दिल से छुट्टी दी। क्यों? दादी जी को आप सब बहनों भाइयों पर इतना विश्वास था, जब भी कभी प्रोग्राम कोई बनता, कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई बड़ा स्थान बनाना है, तो दादी जी कहती थी मेरे लाखों भाई बहने हैं, रोज का एक एक रुपया निकालेंगे ना तो ये बन जाएगा, और इसी तरह से सब बने हैं। तो ये है महान जो नेता, लेकिन वो तो राजनेता की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक नेता दादी प्रकाशमणि जी ने जिस तरह से हम सबको ये रास्ता दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल में कैसे लाया, क्योंकि शुरू से लेकर के जबकि थोड़ा सा छोटा सा रूप था ओम मंडली का, तब से लेकर के बाबा की एक ही विजन थी, दीर्घ दृष्टि थी कि सारे विश्व को ये संदेश पहुंचना है। इस ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की जो शिक्षा है इस पर सारे विश्व की आत्माओं का हक है और उन तक ये पहुंचाना है। तो हम लोग सोचते थे ये कैसे हो सकेगा, अभी तक तो हमारे सेंटर ही थोड़े से हैं, सारे देशों को तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन देखो ड्रामा के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया है, साधन भी ऐसे निकलते गए। आज ये कैमरे दोनों देख रहा हूं मैं, ये कैमरे किस लिए रखे हुए हैं, टेलीविजन के द्वारा सारे विश्व तक ईश्वरी संदेश पहुंच रहा है, कोई विश्व का कोना अब बाकी नहीं है जहां पर पीस ऑफ माइंड चैनल और एक दूसरी चैनल है उसके द्वारा ये संदेश सारे विश्व तक पहुंच रहा है। और इसमें दादी जी का विशेष ये पार्ट रहा कि उन्होंने खुली दिल से छुट्टी दी कि करो ये ऐसा कार्य करो, और किया है, उसकी रिजल्ट हम देख रहे हैं। और आप सब भाई बहनों को इस बात के कारण बहुत नशा होना चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए। ओम शांति। अभी भोग का समय होगा।